ओम शांति। आज मुझे आदेश दिया गया कि साकार माता पिता की पालना का, उनके अंग संग रहने का कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करें। आज्ञा का पालन करके आप सबके सम्मुख हैं, ये तो अवश्य है कि जो साकार माता पिता की पालना थी वो अपने आप में एक अनोखी, अद्भुत और विचित्र थी। भक्ति मार्ग में हम गाते हैं, तुम्ही वो माता पिता बंधु सखा शिक्षक सतगुरु सब तुम ही हो, परंतु इसकी अनुभूति संगम पर होती है जब निराकार साकार तन में आते हैं। तो माता कैसे, पिता कैसे, बंधु सखा परम शिक्षक परम सतगुरु, क्योंकि जब तक शिव बाबा साकार में ना आए तब तक ये अनुभूति आत्माओं को नहीं हो सकती है। जैसे आत्मा जब तक शरीर में ना आए तो कर्म इंद्रियों के द्वारा जब तक वो कर्म ना करे तो कैसे कार्य व्यवहार या रिश्ते निभाए। इसी प्रकार से निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा जब साकार ब्रह्मा तन में आते हैं तो सारा पार्ट ब्रह्मा के द्वारा प्ले करते हैं। अपना तन तो उनको है नहीं, परकाय प्रवेश करते हैं, ज्ञान भी सुनाना है तो बाबा कहते मैं ब्रह्मा मुख कमल के द्वारा ज्ञान देता हूं। तो इसी प्रकार से इसका जो अनुभव हुआ और वो साकार में, फिर कहते हैं परमात्मा को हमने भक्ति में बहुत ढूंढा लेकिन ढूंढने के बाद ढूंढ नहीं पाए, चाहे गुफाओं में, कंदराओं में, जंगलों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, पहाड़ों पर, लेकिन ढूंढ नहीं पाए। आज तक किसी ने ये नहीं कहा होगा कि हमने सब कुछ किया भगवान को ढूंढ लिया, ऐसा कोई आज तक नहीं मिला कहने वाला। भगवान ही अपने बच्चों को ढूंढते हैं और कैसे ढूंढते हैं, दुनिया में भी किसी का बच्चा खो जाए तो वो जरूर है मीडिया का आधार लेंगे, आजकल तो व्हाट्सएप पे भी भेज देंगे, फेसबुक में भी डाल देंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बोलेंगे, लेकिन जब कुछ साधन नहीं था तो अखबारों के द्वारा, वो भी नहीं था तो ढिंढोरा पीटते थे हर मार्केट में मोहल्ले में कि बच्चा खो गया है, तो कोई ना कोई साधन ढूंढने का अपनाते थे। बच्चा माँ बाप को नहीं ढूंढ पाता था लेकिन माता पिता बच्चे को ढूंढ लेते थे और ढूंढ के लाने वाले को इनाम भी रखते थे, जो पहुंचा देगा उसको इनाम है। तो शिव बाबा ने अपने बच्चों को कैसे ढूंढा, अखबार के द्वारा, रेडियो के द्वारा, ये माध्यम तो बाद में बना, लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को दिव्य दृष्टि के द्वारा और दिव्य संदेश के द्वारा ढूंढ लिया और पहचानने वालों ने भी पहचाना। जैसे रावण के पास जब शोक वाटिका में सीता जी थीं, तो हनुमान जी जो राम की मुंदरी ले गए, रिंग अंगूठी, तो सीता जी ने पहचान लिया कि ये कोई रावण के दल का तो नहीं ला सकता है, जरूर राम के दल का ही यहाँ तक पहुँचा है और वही ये लाया है निशानी। तो बाबा के बच्चों ने भी बाबा को पहचाना और निश्चय किया कि ये जो ज्ञान है ये कोई आज की दुनिया के विद्वान पंडित शास्त्रवादी शंकराचार्य जो भी धर्म के नेता हैं ये उनके द्वारा दिया हुआ तो नहीं है, डायरेक्ट परमात्मा कैसे ज्ञान दे रहे हैं। तो हर एक के जीवन का अलग अलग अनुभव है, किसी को प्रदर्शनी का पर्चा मिला होगा तो किसी को रिश्तेदारों ने बताया होगा, तो उसी में से एक हमारा भी अनुभव है कि हम लोग तो दुनिया के अंदर भक्ति पूजा पाठ वाले थे लेकिन हमारे जो लौकिक पिता एक अकेले थे जो पक्के आर्य समाजी थे, और उन दिनों में आर्य समाज का बोलबाला भी बहुत था, बहुत प्रचार प्रसार था, लेकिन इसके बावजूद वो चार वेद छह शास्त्र सबका अध्ययन करते थे और एक पूरी लाइब्रेरी शास्त्रों की बना रखी थी, पता नहीं कितने उपनिषद हैं कितने पुराण हैं सब पढ़ते रहते थे, बस पूजा पाठ कर्म कांड को नहीं मानते थे। लेकिन एक दिन वो भी घड़ी आई जब लखनऊ में मम्मा को आना था और हमारे लौकिक पिताजी लखनऊ गए थे, हम लोग फैजाबाद के पास गांव के रहने वाले थे जो अयोध्या नगरी कहलाती है, तो वहां पर हमारे जो पिताजी के छोटे भाई यानी हमारे चाचा जी थे तो उन्होंने कहा कि भैया आप इतने शास्त्र पढ़ते हैं घंटों घंटों लगाते हैं लेकिन भगवान तो आ चुका है। कहा वो कैसे? तो कहा चलिए हम आपको आश्रम ले चलते हैं और दिखाएंगे। इतने से उनको इतनी आकर्षण हो गई, अभी चलो तुरंत चलो। तो जब ले गए तो वहां पर तब तो दादियां ही टीचर के रूप में होती थी, तो शांतामणि दादी की आप सबने जितने मुलाकात सामने किया होगा और नहीं तो तस्वीर में देखा होगा जीवन कहानी में सुना होगा, किस किस ने शांतामणि दादी को देखा है? बहुत हैं देखने वाले। तो शांतामणि दादी वहाँ लखनऊ की टीचर थी, मुख्य टीचर, ऐसे तो वहाँ तीन चार दादियाँ थीं, लेकिन मुख्य शांतामणि दादी थी। तो सात दिन के लिए कहा कि रुको, तो सात दिन का कोर्स कराएंगे, तो सात दिन में ज्ञान योग धारणा सब, तब सात दिन होता भी नहीं था क्योंकि अपने पास जो चित्र थे वो सिर्फ दो थे, एक कल्प वृक्ष का और एक त्रिमूर्ति जिसके नीचे सृष्टि चक्र, बस जिसको बाबा झाड़ और गोला कहते हैं। तो त्रिमूर्ति का चित्र भी कंबाइंड था, ऊपर त्रिमूर्ति नीचे सृष्टि चक्र, और तीसरा कोई भी चित्र नहीं था उस समय में। तो आदि का जो दिव्य दृष्टि के द्वारा बनाया हुआ था तो वो दो चित्रों को बहुत विस्तार से दादी ने चार पांच दिन में अच्छी तरह समझाया, और मुख्य बात है पांच बातों को पक्का करा दिया कि हमारा जो ज्ञान है वो सिर्फ पांच बात का है, और बहुत सरल शब्दों में सुनाया। जितना वो शास्त्रों का शास्त्रवाद करने वाले थे दादी को बता दिया था मेरे चाचा ने कि बहुत शास्त्र हैं बहुत ये बहस करेंगे, पर दादी ने कहा देखो पांच शब्द का ज्ञान है सारा सार इसी में है। दादी ने कहा कि बस पांच बात कौन सी है? कौन बैठा है, कौन खड़ा है, कौन चल रहा है, कौन आ रहा, कौन जा रहा, बस ये सारा ज्ञान है। तो अगला तो किसी को बताओ तो कहेंगे कोई ज्ञान है? आप लोग भी सुने पहले दिन तो क्या कहेंगे, लेकिन इसमें सारा ज्ञान भरा था और कहा यही पांच बात आपको निश्चय करना है, विश्वास करना है। तो कहा देखो सबसे पहले तो ये कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। तो कौन जा रहा है? कलयुग। और कौन आ रहा है? सतयुग। और खड़ा कौन है? महाविनाश सामने खड़ा है। और बैठा कौन है? बाबा बैठा है। अपने भी हर बात में क्या कहते हैं, कोई परेशानी आई कुछ आई तो क्या कहेंगे? बाबा बैठा है। और चल कौन रहा है? संगम युग चल रहा है, ना कलयुग ना सतयुग, कौन सा युग चल रहा है? संगम। तो ये पांच बातों का ज्ञान दिया और ये पांच बातें दिल और दिमाग में एकदम उतर गई और इन पांचों पे पक्का निश्चय सात दिन के अंदर। सभी शास्त्र भूल गया। फिर पता चला कि मम्मा लखनऊ आ रही है, तो बोले अभी मैं घर नहीं जाऊंगा और मम्मा से मिलके जाऊंगा, क्योंकि जब बाबा बैठा है तो स्थापना में ब्रह्मा सरस्वती का क्या रोल है वो सब दादी ने यज्ञ का इतिहास सब सुना दिया। तो मम्मा से मिलने के लिए रुक गए। तो जब मम्मा से मिले और सवेरे की क्लास मम्मा ने सुनाया, तब भाई बहन बहुत कम होते थे, बहुत बड़ी क्लास है तो 35-40 की सब इकट्ठा करके होते थे, शुरू में इतने भाई बहन तो नहीं थे। तो मम्मा और बाबा बहुत छोटी छोटी क्लास कराते थे। आज बेहद का है, लेकिन जो विश्व महाराजन महारानी बनने वाले उनकी सभा बहुत छोटी होती थी। तो मम्मा ने जब क्लास कराया तो कहा देखो ये जो बाबा का ज्ञान है, बाबा की पहचान है, इसको आगे कौन बढ़ाएगा? बाबा की सेवा का मददगार कौन बनेगा? तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। सात ही दिन हुआ था तो मेरे लौकिक पिताजी ने हाथ खड़ा किया। तो मम्मा बोली कि ठीक है बाद में मेरे से मिलना। सभी चले गए, बैठे रहे और मम्मा के सामने आके ऐसे संदली के आगे बैठ गए। तो कहा कि कैसे संदेश देंगे? कहा जैसे आप बताएंगे मम्मा। पूछा तुम्हारे घर में परिवार में कौन कौन है, किस किस की जिम्मेदारी है? तो सब पूछ लिया मम्मा ने। तो मम्मा ने कहा नहीं अभी तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, उनको छोड़ के तुम नहीं जा सकते हो, तो तुम घर में ये शुरू करो और आपके जो बच्चे हैं वे बेहद की सेवा में बाहर निकलेंगे, आपको नहीं निकलना है। घर में कैसे शुरू करें? तो बताया। फिर मम्मा ने दादी को बुलाया, संतामणि दादी को, तो उनको कहा कि इन्हें ये दो चित्र दे दो और बाबा की कुछ मुरली दे दो, क्योंकि मुरली तो सुनने लगे थे, मालूम भी हो गया मुरली है। इतना ले करके फिर वो मम्मा से विदाई लिया और घर वापस आए। तो पहले जब भी हमारे लौकिक पिता शहर में जाते थे तो कोई फल या मिठाई लेके आते थे, तो इस बारी तो वो खाली आ गए, खाली तो नहीं लेकिन बहुत कुछ ले गए। पर हम लोगों की तो आदत थी सब दौड़ पड़े क्या लाए हैं क्या लाए हैं, तो मिठाई कोई नहीं, फल कोई नहीं, का बहुत कुछ लाए हैं। लौकिक पिताजी ने मम्मा द्वारा दिया हुआ चित्र दिखाया और बताया कि आज से हम सभी कैसे योग लगाएंगे और क्लास करेंगे। तो बताओ कौन कौन करेगा। सभी ने कह दिया हम सब बैठेंगे। तो जितना दादी से कोर्स किया था वो सारा हम लोग को सुनाया, फिर बाबा के महावाक्य के मुरली सुनाना शुरू किया और थोड़े दिन में 10-15 दिन में मुरली खत्म हो गई, थोड़ी मिली थी। लेकिन चलते समय संतमणि दादी से ये नहीं पूछा, ये हमारा खत्म हो जाएगा तो संपर्क कैसे रहेगा, और ना ही दादी ने या मम्मा ने कुछ आगे के लिए बताया। तो अपना जो झाड़ का चित्र है त्रिमूर्ति का, उसमें एक कॉर्नर में पांडव भवन का पता लिखा था। वो पता देख करके अनुमान लगा के बाबा को पत्र लिखा कि ऐसे ऐसे लाए थे और मुरली खत्म हो गई है, अभी आगे हम क्या पढ़ें। तो डायरेक्ट बाबा से लिखा पड़ी हुई, और एक हफ्ते के अंदर बाबा का बहुत सुंदर पत्र आया और मुरली का पैकेट आ गया। सोचो, ना हमने बाबा को देखा ना बाबा ने हम सबको देखा। तो मुरली बराबर आती रही और पत्र समाचार बाबा को देते रहे, और मुरली के आधार पर जैसे बाबा का इतना पोता मेल दो, बच्चों का समाचार लो, चिट्ठी नहीं आती, चिट्ठी लिखते रहे। फिर थोड़े समय 6 महीने के बाद हमारी जो छोटी बहन थी हमसे, माना हमारी हम छोटी बहन, दो हमारे भाई, मम्मी पापा, बड़े भाई लखनऊ थे, उनकी शादी हो गई थी, तो वो ट्रांस में जाने लगी, पहले से शुरू से जाने लगी। तो चूंकि शांतामणि दादी ट्रांस में जाती थी, भोग आदि लगाती थी, वो लौकिक पिता ने देखा था, फिर दादी वतन का मैसेज सुनाती थी, तो जब वो जाने लगी तो वो भी आके सुनाए, तो सोचा कि जितना ये सीन बताती है ये इसके मन की बात तो नहीं हो सकती, और वतन की सारी बातें, बाबा की बातें। फिर वो भी एक दिन आया, जब ऊपर से वतन से आई और कहा कि जो ये वृक्ष में बाबा बैठे हैं ना जड़ में, यही बाबा ऊपर मिलते हैं, और उन्होंने हमको कहा कि मैं माउंट आबू से कानपुर आ रहा हूँ और आप लोगों को मिलना है तो कानपुर आ जाओ। अभी देखिए कहीं से लिखा पड़ी नहीं है, संपर्क नहीं है, बाबा वतन से मैसेज भेज रहे हैं कि मेरे से मिलना है तो आप लोग कानपुर आ जाओ। दिन, तिथि, तारीख सब बता दिया। फिर हमारे पिताजी ने उसे कहा, कानपुर तो बहुत बड़ा है, कहाँ जाएंगे कानपुर। फिर जब वो दोबारा गई तो एड्रेस नोट करके लाई दिमाग में, बाबा ने पता बता दिया, यहाँ मैं रुकूंगा, ये पता है, तो वतन से एड्रेस बताया। चलिए वो भी हो गया, लेकिन गांव में जब शुरू किया तो पहले दिन से जितने भाई बहन आना शुरू किए, आज बिजली भी मैं जो है ना आंख में चौनी खेल रही, मेरी आवाज तो जा रही है ना, तो मैं बोलती जाऊं आप सुनते जाइएगा। तो कुछ लोग क्या, टोटल सारे गांव के लोग विरोधी बन गए। एक तो आपको पता पवित्रता, खान पान, तो दो बात पे विरोध पवित्रता पे ज्यादा था। तो हमारे परिवार पे तो कोई किसी का बंधन नहीं था, क्योंकि माँ बाप सब हम लोग इकट्ठा थे, लेकिन और जो आते थे उन पे काफी बंधन था। तो जब उनको ये पता चला कि बाबा ने वतन से निमंत्रण दिया है, तो क्या हम भी चलेंगे मिलने, हम भी चलेंगे मिलने, और घर वाले बिल्कुल एंटी। यहाँ तक कि जब वो योग लगाते थे तो पीछे से पत्थर मार के जाते थे उनको, उनके बिस्तरों में सर्दी में गर्म पानी, ठंडे पानी का घड़ा, रजाई गीली कर देते थे, और तो कोई पनिशमेंट था नहीं उनके पास। लेकिन पक्के निश्चय, कुछ भी करो। तो ये था कि बाबा ये सब भी जाने को बोल रहे हैं, तो इनको कैसे ले जाए। कहते हम चलेंगे, रुकेंगे नहीं, कुछ भी हो, अगर वो हम लोगों के साथ आते हैं तो उनकी तो हड्डी पसली तोड़ेंगे, लेकिन हम लोग को भी मारेंगे, कहाँ लेके जा रहे हो। तो बाबा ने बहुत अच्छा रास्ता बताया, ये सब काम वतन से ही मैसेज आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो गांव में एक देवी का बहुत मशहूर मंदिर है, वहां पर भागवत हो रही थी, तो 7 दिन की भागवत पूरी हो गई थी और आरती का टाइम था, समाप्ति का। तो जैसे आज 9 बजे आप लोग सुनने बैठे, तो 9 बजे ठीक आरती का टाइम था। तो बाबा ने बताया कि सारा गांव तो चला जाएगा, आरती में कोई रहेगा ही नहीं, और आप लोग उसी समय निकल लेना। अब रात में साधन केवल बैलगाड़ी का था या ये साइकिल का था, और 10 किलोमीटर जाने के बाद रेलवे स्टेशन था, 5 किलोमीटर जाने के बाद बस स्टैंड था, लेकिन वहां तक कैसे पहुंचेंगे? अगर बैलगाड़ियों में जाएंगे तो भी पता चल जाएगा गांव वालों को। तो बाबा ने कहा पैदल निकल लो। रात को 9 बजे हम 10-15 लोग, 5-7 तो हमारे घर के थे, बाकी और साथी, साइकिल के ऊपर भाइयों ने सबके थैला बैग रखे, और वो जो भाई लोग थे उन्होंने डबल डबल, बाबा ने कहा डबल डबल कपड़े पहन लो, बड़ा तो लेके जाने नहीं देंगे, देख लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा झोला या थैला जो भी है उसमें थोड़े कपड़े रख लो। सब गाइड बाबा कर रहे हैं ऊपर से, और रास्ता बदल दो, ना तो बस स्टैंड जाओ ना रेलवे स्टेशन जाओ। एक रेलवे स्टेशन बताया आउट ऑफ वे, वो 35 किलोमीटर दूर था। तो बाबा ने कहा सब लोग रातों रात पैदल चले जाओ, किसी के घर वालों को ये संकल्प नहीं आएगा कि स्टेशन पे जाएं तो आप लोग मिलेंगे ही नहीं, और जो 35 किलोमीटर दूर है वहां किसी की बुद्धि भी नहीं जाएगी। तो हम लोगों ने वही किया, साफ पैदल चल पड़े, और जनवरी का दिन था और कड़ाके की ठंड थी, तब कोई सड़क तो नहीं थी, कच्ची सड़कें थी ईंटे खड़ंजे की, कहीं तो धूल मट्टी वाली भी थी। तो जब हम लोग रात को निकले तो बहुत सारे खेत, बहुत सारी बगिया पार करते हुए, लेकिन एक होता है निश्चय, एक होता है विश्वास, एक होता है भरोसा, जिसको बाबा कहते एक बल एक भरोसा। तो हम लोग निश्चय और विश्वास के आधार पे नहीं चले, भरोसा के आधार पर चले, और उसी भरोसे सारा रास्ता पार करते गए। तो रास्ते में एक कुत्ते ने भी भौं नहीं किया, नहीं तो जिस गली से निकलो कुत्ते ही भौंकने लग जाते हैं, जैसे वो भी सो गए थे। और जिस बगिया से निकलते थे कोई संकल्प नहीं आया इस बगिया में कोई भूत होगा या कोई जानवर मिलेगा या कोई सांप पैरों में आके लिपट जाएगा, कोई भी संकल्प नहीं, जिसको कहते हैं निर्संकल्प अवस्था। एक लगन, एक बल, एक भरोसा। तो रात को 9 बजे चले और सवेरे 5-6 बजे तक 35 किलोमीटर तय कर लिया, पदयात्रा शुरू किया, और वहां से जो हमको ट्रेन मिली और जो एड्रेस बाबा ने बताया था वो पकड़ करके ट्रेन, पैसेंजर ट्रेनें होती थी उस जमाने में, कोयले का इंजन होता था, सबको जो पुराने उनको मालूम है, खिड़कियों में सरिया और कुछ नहीं होता था, विंडो खुला। तो सारे दिन रात भर के चले हुए, सारे दिन कोयले के इंजन में काले हुए, और पहुंच गए कानपुर, और जहां पता बताया वहां पहुंच गए। और जब वहां पहुंचे तो लोगों को तो बिल्कुल अजूबा ही लग रहा था देख के, ये कौन आए हैं साइकिल नहीं लिए, झोला थैला टांगे, इतने गंदे कपड़ों में पहुंच तो गए। तो जब कहो हम बाबा से मिलने आए हैं, ऐसे ऐसे आए हैं, कौन विश्वास करेगा? तो उस समय दोपहर के पहुंचे हुए, सभी लोग भोजन कर रहे थे पत्तलों में, जमीन में पट्टी पे बैठ के, हम लोगों ने भी खा लिया, बिना निमंत्रण खा लिया, सब खा रहे हम भी खाएंगे, अब भूख तो लगी थी। बाबा से मिलना है तो कौन मिलाएगा? वो सुदामा जी का और श्री कृष्ण का मिलन समझ लो, वो सीन क्रिएट कर लो। तो ऐसे कैसे आना होता है? कौन है आपका टीचर? माना बहुत सारा इंटरव्यू, तो कोई मानने को तैयार नहीं। फिर शाम की क्लास हुई, बाबा ने मुरली चलाई, क्लास भी कर लिया, फिर भी कोई ना बाबा से मिलने दे। तो बड़ी दीदी उन्होंने कहा, क्योंकि तब तो बाबा जब कानपुर आते थे या कहीं मम्मा, तो सब बड़ी दादियां दीदियां पहुंच जाती थी। तो बड़ी दीदी ने कहा, बाबा एक ग्रुप ऐसा आया है सवेरे से और वो कहता हमें बाबा से मिलना है और हमको बाबा ने बुलाया है। तो ऐसे सारा समाचार सुनाया तो बाबा ने कहा बुला बुला बुलाओ बच्चों को। रात को 10 बजे बाबा के कमरे में पहुंचा दिए गए और जैसे मिला चलिए बाबा बुला रहे। तो आप समझ सकते हैं कि वो खुशी जो पहली खुशी थी कि बाबा बुला रहे, और जैसे हम लोग गए तो जितनी दादियां बैठी थी, चाहे चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी, अपनी गंगे दादी, शीलिंद्रा दादी, बड़ी दीदी, यहाँ तक कि बैंगलोर की टिक्कन दादी हैदराबाद वहां से, हृदय पुष्पा दादी, गुलजार दादी, तो सब तो बाबा के सामने बैठे और बाबा ने कहा आगे आओ आगे आओ, एकदम आगे बिठा लिया। बाबा भी गद्दी पे नीचे ही बैठे थे तो बाबा ने सब समाचार पूछा, तो मुरली वगैरह का बताया कि ऐसे ऐसे मुरली आती है, सारा समाचार सुना दिया। तो बाबा ने ईशु दादी को बुलाया, तब मुरली की पोस्ट वगैरह ईशु दादी के अंदर होती थी, तो ईशु दादी ने भी पता पूछा तो कहा हाँ हाँ बाबा आप बहुत प्यार से पत्र लिखते हैं और मुरली जाती है, पक्का हो गया। फिर बाबा ने जब सुना कि रात 35 किलोमीटर चले हैं तो हम सबके पांव तो इतने सूजे थे, आप सोच सकते हैं जो घर से ना निकला उसके पांव कितने होंगे मोटे। तो बाबा ने, क्योंकि मैं आगे थी, बाबा ने कहा बच्ची पैर दिखाओ। तो जब बाबा को पैर दिखाया तो रहम दिल बाप को बड़ा रहम आया, तो बाबा थोड़ा सा आगे हाथ बढ़ा के पैर दबा दिया तो द्रौपदी के पांव दबाए। फिर बाबा ने कहा बच्ची थकावट मिट गई, और सचमुच बाबा के पैर दबाते, ताली तो बजाओ, भगवान ने पैर दबाए, हम कितने खुशकिस्मत वाले हैं। आज बाबा से मिलने के लिए भी और बाबा पैर दबाए। तो बाबा ने कहा बच्ची दर्द दूर हो गया? अभी तो आंसू आ रहे थे, बोला नहीं जा रहा था। फिर बाबा ने कहा अच्छा, तो हमको अचानक ऐसे ख्याल आया था, उन दिनों में खादी का बहुत प्रचार था महात्मा गांधी का, तो हमने चरखा की ट्रेनिंग ली थी और वो जिससे 4-5 धागे एक साथ निकलते थे, वो वाला नहीं तकली वाला और ये वाला दूसरा, तो उस कंपटीशन में हमको खादी का एक बहुत बड़ा कालीन मिला था, गलीचा। तो ऐसे ही मैंने रख लिया था कि हम जा रहे हैं तो जो मुझे इनाम में मिला है वो हम बाबा को देंगे। हमको कोई गाइड करने वाला थोड़ी था, जैसे आज बहनें सिखाती हैं भई यज्ञ में जा रहे हो तो कुछ ले जाओ, अंदर से ही आया। तो वो जो कारपेट था वो हम ले आए थे, तो बाबा के आगे खोल के बिछा दिया कि बाबा ये हम लाए हैं, बता दिया कैसे मिला। तो बाबा ने कहा कि देखो बाप गरीब निवाज है तो बच्चे को अभी रिटर्न देना है। तो उस समय बाबा कहे कि देखो इसने खादी का दिया है, इसको उलन दो। तो कोई उठ के ना दे, लच्छू दादी भी ना उठे तो ईशु दादी भी ना उठे कि शॉल कैसे बाबा को दिला दें। वो कोई वीआईपी आया हो, कोई और हो, गिनी चुनी उस समय स्टॉक में शॉलें होती थी और इन्हीं कोई बाबा उड़ा देगा, तो किसी का मन नहीं था देने का। तो जब बाबा ने भी देखा कोई नहीं दे रहा तो बाबा खुद उठ के खड़े हो गए, जाके पेटी खोली, लोहे के बड़े बड़े ट्रंक पेटियां होती थी, और खोल के अपने हाथ से शॉल ले आए और मैं बैठी थी, मुझे ये भी समझ नहीं था कि बाबा खड़े होके शाल पहना रहे तो मैं खड़ी हो जाऊं। हम बैठे ही रहे और बाबा ने मुझे शाल से पूरा लपेट दिया। तो शायद भगवान ने सम्मान भी कर दिया, पैर भी दबा दिया तो शाल भी उड़ा दिया। तो कहा ये अभी तुरंत का रिटर्न है और 21 जन्मों के लिए जमा हो गया। फिर बाबा ने कहा, क्योंकि संगम योगी भगवान की भाषा, बाबा ने कहा बच्ची अगर तुम खड़ी हो जाओ तो बाबा तुम्हें सेवा में लगा देगा। तो खड़ी होने का अर्थ मालूम ही था, उठ के खड़े हो गए कि बाबा हमको सेवा में लगा देगा। खड़ी होने का मतलब कि पैरों पर स्टैंड हो जाए, इतनी ताकत आ जाए। तो बाबा ने कहा भोलेनाथ के बच्चे भोले हैं, रात ऐसे समझ लो कि देखने में सुनने में काफी समय सबको लग गया और हैरत सबको ये थी कि जो सुबह से बैठा कोई बाबा तक संदेश नहीं पहुंचा रहा था और उसकी बाबा मालिश पालिश खातरी खूब कर रही है। फिर बाबा ने कहा इन बच्चों को कहाँ ठहराएंगे रात को। तो ये हुआ कि कोई इंतजाम नहीं है, इनकी सूचना नहीं थी। तो उस समय एक इनकम टैक्स के कमिश्नर आते थे, तो बाबा ने कहा बुलाओ बाबूजी को और उनकी कार मंगाओ और उनके घर में इनों को आराम से सुलवाओ। तो पहले दिन कमिश्नर का घर मिला सोने के लिए, तो रात को बाबा ने भेजा। तो हम वहां बने रहे दो दिन तीन दिन, मुरली सुनते रहे, हमारा सारा परिवार ग्रुप खाते पीते रहे। तो एक दिन किसी ने कहा कि आप लोग कब जाओगे वापस, कई दिन हो गया अब तो जाओ आप लोग। तो ये तो सोचा ही नहीं कि वापस जाएंगे, उसी में मस्त थे, भगवान मिला। तो बाबा क्लास करा के बाहर टेनिस खेलते थे क्लास नाश्ते के बाद। तो जब बाहर बगीचे में आए तो हम सब ऐसे राउंड में अर्ध चंद्रमा के रूप में खड़े हो गए। तो बाबा ने कहा बच्चे क्या है बताओ। तो बताया गया कि आज हम लोग वापस जा रहे हैं। तो बाबा फिर दृष्टि देते देते लाइन से सबको दृष्टि दिया, एक बार दो बार। तो मैं बीच में थी, तो बाबा ने कहा बच्ची तुम भी जा रही हो। तो आवाज तो कुछ निकला नहीं, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। फिर मेरे लौकिक पिताजी से कहा कि ये बच्ची तो मेरी है, तुम इसको ले जाओगे क्या। बोले जब आपकी है तो मैं कौन हूं ले जाने वाला। तो बाबा दो कदम आगे आए और हाथ पकड़ के गले से लगा लिया, कहा बच्ची तुमको कभी नहीं जाना है, मैं 40 साल वापस नहीं गई, गई नहीं। फिर बाबा ने अमृतसर वगैरह भेजा, थोड़ा इसको ट्रेनिंग हो जाए, ज्ञान हो जाए सेंटरों का। फिर उसके बाद मधुबन में बुला लिया। मधुबन में बाबा के साथ सेवा करने का बहुत अच्छा मौका मिला। अब यहाँ से पाठ शुरू होता है कि हमारा बाप कैसे है, टीचर कैसे है, गुरु कैसे है। तो जैसे बाबा ने एक एक पाठ का किया, तो जैसे हम अभी समय कम हो रहा है कि वो हमारा टीचर कैसे है। एक बार ऐसे बाबा मुरली सुना के बाहर निकले तो बाहर सड़क का कुत्ता आ गया, कहा बच्ची भगाओ भगाओ। तो मैंने कहा बाबा पांडवों ने कुत्ता पाला, आप भी एक पाल लीजिए। तो बाबा कितनी अच्छी शिक्षा दी, कहा बच्ची गॉड के बच्चे उल्टे हो गए हैं, डीओजी हो गए हैं। तो उनके जो संस्कार 6 महीने भी कहते हैं ना, पूछ डालो तो सीधा ना हो नली से, तो क्या मेरे बच्चों के कम टेढ़े संस्कार हैं? जब गुस्सा आता है तो कैसे बोलते हैं, तो वो पालने की मुझे जरूरत नहीं है। तो लगा कि भाई अपने संस्कार को सुधारना है। फिर एक दिन बाबा ने मुरली में कहा मेरे बच्चों को दे अभिमान बहुत है, अगर दे अभिमान नहीं तो हिस्ट्री हॉल का फाउंडेशन पड़ा था तो रोड़ी गिट्टी तोड़ी जा रही थी पत्थरों की, कहा वो जाके तोड़े। तो मैंने सोचा कि आज हम क्लास के बाद जाके हथौड़ा लेके हैमर लेके तोड़ेंगे, बाबा खुश होगा। बाबा पीछे से गए, बोला ये क्या कर रही हो? वो तो मैंने कहा बाबा आपने तो ऐसा बोला था, कहा भीलों के साथ रोड़ी तोड़ के देह अभिमान नहीं होगा, कि देही अभिमानी बनने से देह अभिमान नहीं होगा। त्रिलोकी नाथ के बच्चे और भीलों के साथ बैठ के रोड़ी तोड़ रहे हैं, गिट्टी तोड़ रहे हैं, तो अपने सम्मान में रह के कर्म करो, बैलेंस रखो। वहां से बाबा ने उठा लिया, वो भी शिक्षा दी। फिर ये हमारा परिवार कैसे है, तो गिनती के सवेरे क्लास में टोली देनी होती थी, तो जितने भाई बहन उतनी टोली होती थी पॉट में, तो बाबा अपने हाथ से देते थे। और कभी कभी बाबा भाई बहनों को कहते थे आओ टोली बांटो, तो वो खुश हो जाते थे। तो बहनों की तरफ बहनें, भाइयों की तरफ भाई उठ के आते थे। जब नजदीक आ जाएं तो बाबा के बच्चे ठहरो, भाइयों की कमजोरी बाबा को पता, बहनों की पता, तो बहनों से कहते थे अगर 6 महीने रोया ना हो तो टोली को हाथ लगाना। तो आपको पता है कि माताएं बहनें तो कोमल होती हैं, तो कोमल दिल आंसू तो पहले आते हैं, तो वो वहीं रुक जाते थे। और भाइयों को कहते थे 6 महीना गुस्सा ना किया हो तो टोली बांटना, तो असंभव है, तो फिर बाबा ही देते थे। तो फिर बाबा क्या किया, जो पेड़ा था वो यूं शुरू किया, तो हम छोटे थे, आगे जमीन में ही बैठना होता था, तो हमने 4-5 पेड़े कैच कर लिए। फिर बाबा ने बुलाया, बच्ची कितने पेड़े हैं? तो बड़ी खुशी में कहा बाबा 5 है। तो आने कहा बच्ची ये तुमने सोचा कि पेड़ा गिनती का है, एक तो तुम्हारा हुआ और 4 का हक तुमने मारा, वो भी तुम्हारे भाई बहन है, ये परिवार है। बाबा ने पूरा परिवार का ज्ञान दिया। तो कायदा कहता है कि वो 4 पेड़े लाके इसमें रख देना था। तो जैसे एक परिवार की महसूसता, दिल से अपनापन या अपना परिवार है, वो बाबा ने बुद्धि में बिठा दिया। फिर बाप के रूप में कैसे पालना दी, टीचर के रूप में सिखाया, परिवार के रूप में सिखाया। तो एक बार बाबा ने कहा बच्ची तुम कभी घूमने गई हो? कोई आते थे भाई बहन, दिलवाड़ा है सब जाते थे देखने। मैंने कहा नहीं बाबा, आपने बोला नहीं और हम गए नहीं। तो बाबा ने मुझे भेजा, तो पहले पहाड़ों पे चेरी बहुत होती थी, तो तोड़ के ले आए पत्ता लेकर के, उसके दोने बना के, और बाबा को पता लाई जरूर होगी, जो जाते थे लाते थे, हम लोगों ने आपस में खा लिया। तो बाबा ने पूछा, तो मैंने कहा हाँ बाबा चेरी लाए थे, कहाँ है लाओ, आपस में खा लिया। तो कहा बच्ची ला कहता है कि जो चीज आए पहले बड़ों को दिखाना है, उसके बाद फिर राय लेनी है कि कैसे इसको बांटना है, कैसे खाना है। अभी देखो चेरी की कोई बड़ी चीज नहीं थी, जंगल से आई थी, पर बाबा ने यह सिखा दिया कि हर चीज को बड़ों की नजर में लाना है। बाबा अपनी बादशाही बच्चों के आगे खोल के रख देता है, हथेली पर बैठ ले और बच्चे करौंदा तक नहीं दिखाते हैं। तो वो दिन है कि आज का दिन है, जो मेरे आगे बड़े रहे मैंने कभी तिनका भी नहीं छिपाया। और अभी भी अगर हम किसी सेवा केंद्र पे जाते हैं, कोई चीज मिली या कुछ खरीदारी किया, कुछ ऐसे शहर है जहाँ कुछ खरीदते हैं, हम अपने रूम में नहीं गए कभी लेके, सीधा जिस सेंटर पे गए हैं उस बहन के आगे खोल के रख दिया, नहीं नहीं ले जाओ ले जाओ, नहीं आप देखो हम क्या क्या लाए हैं। तो वो एक संस्कार बन गया, एक सीख से संस्कार बन गया। तो ऐसे बाबा की बहुत सारी बातें, फिर 13 मेरा दिमाग में ना आए, तो मैं ऐसे रास्ते में जा रही थी, बाबा ने कहा बच्ची इधर आओ, ये किसके वस्त्र गिरे हुए हैं, रस्सी पे सूखने को डाला था। तो मेरे मुंह से निकला बाबा मेरा नहीं है। बाबा ने कहा बच्ची ये क्या, ये 13 मेरा क्या होता है, इसका 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 किसी का नहीं है, ये यज्ञ का वस्त्र है, अगर किसी को मिला है तो यज्ञ से मिला है, ये उड़ जाएगा, फट जाएगा, झाड़ियों में जाएगा तो यज्ञ का नुकसान होगा। अगर ये गंदा हो गया, दोबारा धोना पड़ेगा तो साबुन यज्ञ का खर्च होगा। तो ये कभी ना दिमाग में लाओ कि मेरा नहीं है, ये यज्ञ का है। तो यज्ञ की बात को, यज्ञ की वस्तु को कितनी कदर रखनी है वो बाबा ने दिमाग में रख दिया। तो उस दिन से यज्ञ की एक एक चीज, एक एक कने का, जैसे कि मम्मा कहती थी कि या कोई भी समय का एक क्षण भी नहीं गंवाना है, तो यज्ञ का एक कण भी नहीं गंवाना है। तो वो बाबा की सीख आ गई। फिर ऐसे ही कई बातें थी जो बाबा सिखाते रहे और हम करते रहे। और एक हंसी की बात बताते, टाइम हो गया, बहुत लंबा अनुभव है कि बाबा के रूम की सफाई, बाबा ने मुझे कहा था, बच्ची मेरा रूम साफ कर देना। तो मैं रूम साफ कर रही थी तो बाबा ने कहा, बच्ची इधर आओ, ये देखो एक मक्खी है जो बाबा को तंग कर रही है, बाबा पत्र लिख रहे थे, तो इसको मारो। तो प्लास्टिक का वो था, सुपड़ी से मारा, तो मैं ऐसे लेके फेंकने चली। बाबा ने कहा, बच्ची इधर आओ, इसको फेंको नहीं, ये मरी मच्छी बड़े काम की है। ये मक्खी क्या बड़े काम की है, अरे इससे बड़ी सर्विस होगी बच्ची, तुम नहीं समझती हो। आप बता पाएंगे मरी मक्खी क्या सेवा करेगी? कोई के पास है जवाब? जो बाबा पत्र लिख रहे थे, उस जिस बहन को लिख रहे थे, तो बाबा ने एक लाइन बढ़ा दिया कि बच्ची तेरी सेवा वृद्धि को क्यों नहीं पा रही है, क्या तू बैठे बैठे मक्खी मारती है? उसी में पोस्ट कर दिया। अब वो बहन ने जब पत्र खोला होगा, देखा होगा, तो उसको कितना लगा होगा, सेवा में कितनी बल भर लिया होगा कि बाबा ने आज मुझे मरी मक्खी भेजी है। और मेरे को लगा कि बाबा रोज कहते, बच्ची तुझे मैं सेवा केंद्र पे भेज दूंगा, तो कहीं बाबा मुझे भी मरी मक्खी न भेज दे। तो उससे इतना दिमाग में, दिल में बैठ गया कि जो मुझे कभी आलस आया ही नहीं आज तक। आलस क्या होता है, बस एक बात करके पूरा करते हैं, बहुत पूरा भागवत है। तो एक दिन क्या हुआ कि बाबा बाहर निकले, तो हम दो तीन बहनें, छोटी छोटी कुमारियां थी, तो बैठ करके, मेवाड़ का पलंग था और विश्वरत्न दादा यज्ञ का इतिहास सुना रहे थे, हैदराबाद का, कराची का, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो बाबा ने देखा कि खटिया ढीली है, रात को 10 बज रहा था, बाबा के रूम के बाहर जो जगह है, तो बाबा ने कहा, बच्ची खटिया ढीली है, क्योंकि मैं रह रही थी परमानेंट और बहने दो तीन दिन के लिए आई थी कुमारियां छुट्टी में, तो बाबा हम ही को बोलेंगे। तो मुंह से निकला, बाबा कल कस लेंगे। तो बाबा ने कहा, बच्ची कल का दिन काल का दिन होता है, उतरो नीचे। उतार दिया और जैसे बाबा ने हाथ लगाया और यूं पैर लगा के खींचा, तो फिर हमने और विश्वरतन दादा ने चारपाई कस के ठीक कर दिया। और बाबा तब तक खड़े रहे और शिक्षा देते रहे कि कभी आज का काम अभी करना है, छोड़ना नहीं है। वो दिन है कि आज का दिन है, आज का जितना काम होगा मैंने कभी कल के लिए नहीं छोड़ा होगा। चाहे वस्त्र धोना हो, चाहे प्रेस करना हो, चाहे बर्तन मांजने हो, चाहे घर की सफाई करनी हो, चाहे बड़े बड़े भंडारे हुए होंगे, चलो छोड़ देते हैं कल करेंगे। सफर करके जाने के बाद पानी पीछे पीते, आज तक नियम है, पहले सारे वस्त्र सफर के धुलाई, वो चाहे एक ड्रेस हो चाहे 15 ड्रेस हो। दिमाग में है कि समझ लो 2 घंटा मेरी गाड़ी लेट है, और आज दिन मेरी आयु 77 साल की चल रही है, मैंने छोटी बहनों से कपड़े नहीं धुलवाए हैं, ना उनसे प्रेस कराए हैं, 2 काम नहीं लिया है अपना। तो बाबा ने कहा था, बच्ची जो अपनी सेवा नहीं कर पाएगा वो विश्व सेवक क्या बनेगा? और जो कर्म हम करेंगे हमको देख दूसरे करेंगे, तो इसलिए आलस, अलवेलापन, सुस्ती, कल का काम, आज का काम कल बिल्कुल नहीं, कल मेरा नया काम, नई दिनचर्या होगी। तो इस तरह से बाबा ने बहुत सारी सीख दी, मम्मा ने बहुत सारी सीख दी, उठना कैसे, बैठना कैसे। एक और सुना दे, बाबा ने मेरा पेपर लिया और वो गुरु के रूप में लिया। कहां अमृतसर से बस्तर आए थे, कलर्ड साड़ियां थी, तो बाबा के पास जो बांदेली माताएं आती थी तो बाबा उनको रंगीन साड़ी देते थे ताकि वो छिपके आती थी और कोई गिफ्ट उनके घर वालों को पता न चले और साड़ी मिक्स हो जाएगी। तो बाबा ने कहा बच्ची आओ, संतरी दादी थी, सारा स्टॉक संभालती थी, बच्ची ये ले लो ये ले लो ये ले लो, मैं सब ना करती गई। और ना करते करते फिर एक बाबा ने क्रीम कलर की सिल्क की साड़ी, गोल्डन पट्टा इतना चौड़ा निकाला, कहा बच्ची ये ले लो, ये तेरे काम की चीज है। तो मैंने ना बोला फिर, तो संतरी दादी तो चूंकि बाबा को इतना साथ अंग संग रहे, संतरी दादी ने कहा तुम देख रहे हो इस समय बाबा का रूप क्या है, क्या है, सतगुरु के रूप में तुमको दे रहा और तुम सतगुरु के उसको ले नहीं रही हो, क्योंकि बाबा ने जो शब्द बोला महावाक्य कहेंगे, बच्ची ये गुरु का पक्खर है या आशीर्वाद रूप में ले लो, पक्खर माना वस्त्र है, चोला है, ये गुरु तुमको दे रहा है। और मैंने ना बोल दिया, तो संतरी दादी ने आग दिखाई और कहा तुमको लेना, हाथ बढ़ा के लो। तो मैंने उसी प्यार से लिया, गुरु के रूप में हम ले रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्ची ले तो लिया, तुम पहनोगी कब? मैंने कहा कब पहने बाबा? तो कहा देखो जब सेवा पे जाओगी तो वहां तो पहनोगी नहीं भाई बहनों के आगे, और यहाँ भी कब पहनोगी तो वहां मधुबन में बड़े बड़े लकड़े जलाए जाते थे चूल्हे में और ऊंची ऊंची भट्टी चूल्हे की थी, तो मटके में मट्टी घोल के कपड़ा लेके उसको पोता जाता था। तो बाबा ने कहा बच्ची जब तुम सवेरे जाना अंगीठी पोतने तो ये पहन के पोतना, सुना, गुरुजी का वस्त्र पहन के अंगीठी को मिट्टी पोतना। अब वो साड़ी भी इतनी सुंदर है, गोल्डन बॉर्डर है, और बाबा कह रहा गुरु का वस्त्र है, पोतना भी मिट्टी है, तो इतना संभाल के मैं पोतती थी कि उस पे मिट्टी का कोई छींटा ना पड़े। उससे मेरी वो प्रैक्टिस हो गई कि मैं चाहे कितने लोगों का ब्रह्मा भोजन बना लूं, मेरे पे कभी हल्दी का दाग नहीं आया आज तक। ये बाबा ने सफाई सिखा दिया। फिर एक दिन पूछा बच्ची तुमको सब आता? मैंने कहा जी बाबा सब आता, जी जितना आता तो जी बाबा। बाबा ने कहा तथास्तु, यही बाबा की महावाक्य निकले। तो आज दिन तक भी सेवा केंद्र की जो सेवा के कार्य हैं, चाहे फील्ड का हो, चाहे बर्तन मांजने का हो, चाहे कोई भी कार्य हो, सब आ गया, मेरे से कुछ रुका नहीं है। हम किसी के अधीन नहीं हुए कि भाई आएगा तो करेगा, माताएं आएंगी तो करेंगी, या मना किसी के ऊपर अधीन नहीं रहे। बाबा ने कहा, हमने जी बोला, बाबा ने वरदान दिया, तो आज दिन तक भी हमारे सब काम पूरे होते रहे और बाबा कराते रहे। इस तरह से बहुत सारे अनुभव हैं, तो इतना ही चखा चुखी करा दिया और बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया है, जो हमने सारा भरा पूरा परिवार देखा, सब दादियां देखी, और 1960 से लेके 2018 हो गया, निर्विघ्न बाबा चलाता रहा, उसके वरदानों में पलते आ रहे हैं। ओम शांति।